बरसें कि गुंडन के साथ लेक्चर
यहाँ तो तीन
श्व
कुत्ता
अगर
पाप पूर्ण पशु या जीव
पाप पूर्ण पशु या जीव
अंतेवसाईभ्य सबसे नीच चांडाल को आमान जीवन की आवश्यकता है
जीवन की आवश्यकता
संविभजे
संविभजे
विभाजित करे
विभाजित करे
यथा जितना
जितना
अपि
अपि
भी
एकम
एकम एक आत्मना
आत्मना
अपनी
अपनी
दाराम
दाराम
स्त्री को
स्त्री को
निणाम
निणाम
सामान्य लोगों का
सामान्य
स्वस्वगृह स्त्री को अपना ही समझकर
स्त्री को अपना ही समझकर
स्वीकार किया जाता है
स्वीकार किया जाता
है यतः जिसके कारण अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद ऐसी भक्तिदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की कुत्तों पति पुरुषों तथा चांडाल समेत पशुतों को उनकी समुचित आवश्यकताएं प्रदान करके उनका पालन करना चाहिए। आवश्यकताएं गृहस्थों द्वारा पूरी की जानी चाहिए, यहाँ तक कि घर की अपनी उस पत्नी को भी, जिससे मनुष्य घनिष्ठापूर्वक आसक्त होता है। अति नियोगी तथा सामान्य जनों के निर्देश निर्दोष स्वागत में भी नियुक्त करना चाहिए। यद्यपि आधुनिक समाज में कुत्ते को घरेलू साज सामान माना जाता है, लेकिन वैदिक गृहस्थ जीवन पद्धति में कुत्ता अदृश्य होता था। जैसा कि यहाँ बताया गया है, कुत्ते का पालन भोजन देकर किया जा सकता है, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जाता। शयन कक्ष की बात है तो पोषण दूर है। जाति से निकाले व्यक्ति का अछूत चांडालों को भी जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। इस संबंध में यथाशक्त प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है जितने का पात्र हो। जाति से निकाले गए लोगों को आवश्यकता से अधिक धन नहीं दिया जाना चाहिए, अन्यथा वे इसका दुरुपयोग करेंगे। उदाहरणार्थ, इस समय निम्न जाति के लोगों को काफी मजदूरी दी जाती है, लेकिन ऐसे लोग अपने धन को ज्ञान का अनुशीलन करने तथा जीवन में प्रगति करने में उपयोग न करते, शराब पीने तथा इसी प्रकार के पाप कर्मों में लगाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, चातुर्वर्ण माया पुष्कम गुण कर्म विभाग दशम। लोगों के कार्य तथा गुणों के अनुसार मानव समाज के चार विभाग होने चाहिए। निम्नतम गुणों वाले व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिसमें उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता हो। यद्यपि मनुष्य के कर्म तथा गुणों के अनुसार ऐसा विभाजन होना चाहिए, किंतु फिर भी यहाँ यह सुझाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त होनी चाहिए। आजकल के साम्यवादी प्रत्येक व्यक्ति को जीवन की आवश्यकताएं दिलाने के पक्ष में है, किंतु वे केवल मनुष्य पर विचार करते हैं, निम्नतर पशुओं पर नहीं। किंतु भागवत में दिए गए सिद्धांत इतने व्यापक है कि प्रत्येक जीव को, चाहे मनुष्य हो या पशु, उनके गुण दोष पर विचार किए बिना जीवन की आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। अपनी पत्नी को भी जनता की सेवा के लिए दे देने के पीछे यह भावना होती है कि वह अपनी पत्नी के घनिष्ठ संबंध को धीरे धीरे त्याग दे, क्योंकि अत्यधिक घनिष्ठता के कारण वह अपनी पत्नी को अपनी अर्धांगिनी या अपने से अभिन्न सोचता है। जैसा कि पहले ही सुझाया गया है, स्वामित्व की भावना को यहाँ तक कि अपने परिवार के स्वामित्व को भी त्याग देना होगा। भौतिक जीवन का स्वप्न ही जन्म मृत्यु के चक्र में बनने के लिए कारण स्वरूप है, अतएव इस स्वप्न को त्याग देना चाहिए। फलतः मानव जीवन में अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति को त्यागना होगा, जैसा कि यहाँ पर सुझाव दिया गया है। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय मूर्तये श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नारायणाय।
मते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषम शून्यवाणी पाशात देशकारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे भागवत के श्लोकों के साथ रहकर भागवत के श्लोकों का चिंतन करके विचार करके इनकी व्याख्या सुनकर प्राप्त होता है, क्योंकि भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। परम सुख प्रदान करने वाला, समस्त पापों से मुक्त करने वाला और भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला यह ग्रंथ प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्रतिदिन यहाँ श्रवण कर रहे हैं। और इस ग्रंथ में सप्तम स्कंध के 14वें अध्याय में वास्तव में इस अध्याय के मूल वक्ता, इस अध्याय के ही नहीं इस सप्तम स्कंध के मूल वक्ता श्री नारद मुनि हैं। राष्ट्रीय सभा में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा से प्रसन्न होकर यह प्रवचन कर रहे हैं। गत अध्याय में नारद मुनि ने सन्यास धर्म का वर्णन किया और अंत में अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा कि व्यक्ति सन्यास लेकर ही भगवान को प्राप्त हो सकता है, बिना सन्यास के व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और इसी बात को श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध के 3वें अध्याय में गजेंद्र जी अपनी स्तुति में कहते हैं। गजेंद्र जी अपनी स्तुति में बहुत सारे श्लोक को कहे न विद्यते जन्म च कर्मवा, और यहां तक कह दिए कि न नाम न गुण न रूप, और यहां तक गजेंद्र जी अंत में कहते हैं नमो गिराम विदुराय, हे प्रभु आप इस संसार में सभी जीवों से दूर हो। नमो दुराय, हे प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। किस प्रभु को कहते हैं जो सबसे दूर है? कहते वो प्रभु हमारे इंद्रियों से शरीर से दूर है और गिरा हमारे वाणी से भी भगवान दूर है। वाणी की बात छोड़ दीजिए, नमो चित्त सामपि, वो भगवान हमारे मन से भी दूर है। मन के द्वारा या वाणी के द्वारा भी जिस भगवान को पकड़ा नहीं जा सकता है उस भगवान को नमः मैं प्रणाम करता हूं। गजेंद्र जी कहते हैं भगवान बहुत दूर है, विदुर है। तो मन में ये प्रश्न होता है कि इतने दूर भगवान को हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? तब गजेंद्र जी अगला श्लोक कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है विबुद्ध बुद्धिमान व्यक्ति संन्यास के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो वहां पर हमारे अनेक आचार्यों ने संन्यास का अर्थ लिखा है कि संन्यास का अर्थ केवल डंडा और लाल कपड़े ही नहीं होता है। संन्यास शब्द का अर्थ होता है सम्यक रूपेण न्यास। न्यास का अर्थ होता है एक जगह पर रख देना, बैठ जाना। तो संन्यास का वास्तविक अर्थ होता है कि हम जो है, हमारा जो स्वरूप है, उस स्वरूप में स्थित हो जाना, उसे संन्यास कहा जाता है। हमारी वाणी को हमारे स्वरूप में लगा देना, हमारी इंद्रियों को हमारे स्वरूप में लगा देना, अर्थात हमारे वाणी को भगवान के गुणगान में लगाना, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, मन को भगवान के चिंतन में लगाना। इस प्रकार से 2400 घंटा व्यक्ति भगवान का चिंतन, स्मरण, मनन करता है, उसे संन्यास कहा जाता है। इस श्लोक की व्याख्या में श्रीधर स्वामी कहते हैं संन्यास का एक दूसरा अर्थ होता है यति, और यति का अर्थ होता है यत्न परायण इति यति। संसार में कुछ लोग संन्यास का अर्थ समझते हैं कि बस घर बार छोड़ देना, ऑफिस छोड़ देना, पुत्र पत्नी धन को छोड़ देना, इसे संन्यास कहते हैं। परंतु संन्यास का वास्तविक अर्थ होता है यत्न परायण, जो यत्न में, जो 2400 घंटा मेहनत में लगा रहता है, जो 2400 घंटा भगवान के भजन में और भक्ति करके प्रचार में और इस प्रचार के प्लान में लगा रहता है, उसे यति कहा जाता है। राधा गीता भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्री गौर निताय की, श्री गोपाल की। तो संन्यास धर्म का वर्णन नारद मुनि के, और संन्यास धर्म के अंत में उन्होंने कहा कि संन्यासी व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता। तब इस अध्याय के प्रारंभ में युधिष्ठिर महाराज दोनों हाथ प्रभु गृहस्थम एताम पदवी विधिना येन चांदसा याति देव ऋषि ब्रीहि मादृशो गृह मुद्यति। हे प्रभु, आपने संन्यास धर्म का वर्णन कर दिया, स्त्री धर्म का वर्णन किया, परंतु मैं संन्यास, मैं न तो संन्यासी हूं न तो स्त्री हूं, मैं एक गृहस्थ हूं। और एक गृहस्थ व्यक्ति गृहस्थी में रहकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति कर सके, वह उपदेश मुझे अंजसा, और ऐसा कठिन उपदेश नहीं, आसानी से एक सरल उपाय बताइए जिसके द्वारा एक गृहस्थ गृहस्थी में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सके। हम गृहस्थों के लिए उपदेश, युधिष महाराज हाथ जोड़कर नारद मुनि को यह जिज्ञासा कर रहे हैं। एक आचार्य लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज वहां जिज्ञासा कर रहे हैं, उस सभा में कृष्ण भी बैठे हैं, और कृष्ण भी दोनों हाथ जोड़कर युधिष्ठिर महाराज की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हाँ नारद जी, हम भी गृहस्थ हैं, युधिष्ठिर के पास तो कम पत्नियां हैं, मेरे पास 16108। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं गृह में फंसा हुआ, तो भगवान कृष्ण इशारा करते हुए कह रहे हैं मैं तो बहुत बड़े गृह में फंसा हूं, बहुत सारी पत्नियां हैं, तो वो आप सुना दीजिए गृहस्थ धर्म के बारे में। तो नारद मुनि गृहस्थ धर्म का उपदेश इस 14वें अध्याय में करते हैं। गृहस्थ जो गृह में स्थित है उसे गृहस्थ कहा जाता है, और गृह का साधारण हम घर को समझते हैं, हम जिस मकान में रहते हैं उसे गृह कहते हैं। गृह में रहने वाला भी गृहस्थ है, परंतु वास्तविक गृहस्थ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं न गृहम गृहत्याहु गृहिणी गृह उच्यते। मात्र गृह में रहने वाला, घर में रहने वाला ही गृहस्थ नहीं माना जाता है, गृहिणी जो गृहिणी के साथ रहता है, अपनी पत्नी के साथ रहता है, वह वास्तविक गृहस्थ। फिर चाहे उनका घर हो या झोपड़ी हो या रास्ते में रहता हो, यदि पत्नी साथ में है तो उसे गृहस्थ कहते हैं, गृह में स्थित। अरे सही बात है, वास्तव में इस आश्रम को बहुत सुंदर नाम दिया गया है गृहस्थ, क्योंकि यह आश्रम स्वीकार करते व्यक्ति को बहुत बड़ा ग्रह लग जाता है, इसलिए कह दिया गृहस्थ, जो ग्रह में स्थित हो जाता है। अनेक ग्रह होते हैं, सोम, मंगल, बुध और सबसे भारी ग्रह शनि ग्रह, और ये सब जब इसका ग्रहण होता है तब सब लोग डर जाते हैं, हाहाकार हो जाता है, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक बार किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा ग्रहण कौन सा है, बहुत ग्रहण होते हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, परंतु वास्तव में सबसे बड़ा ग्रहण है पानी ग्रहण। पानी ग्रहण करना अर्थात विवाह करना और गृहस्थी को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ा ग्रहण है। वास्तव में व्यक्ति को भूत चढ़ जाता है। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं गृह में स्थित हूँ, गृह में भी हूँ और गृह में आसक्त हूँ। वास्तव में युधिष्ठिर महाराज ऐसे नहीं है, वो तो भगवान के परम भक्त हैं। जिस भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के लिए राजसूय यज्ञ के लिए इतना मेहनत परिश्रम, महाभारत के युद्ध में नौकर बन गए और अपना घर छोड़कर भगवान जी युधिष्ठिर महाराज के घर पर रहते थे, वो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मैं गृह में भी हूँ, मैं गृह में आसक्त हूँ। बिल्कुल गलत बात है। युधिष्ठिर महाराज अपनी नम्रता बता रहे हैं और आगे आने वाली जनता के लिए युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि के मुख से उपदेश दिलाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने यह कहा कि मातृशो गृह मुढ़े दी, मेरे जैसा गृह में मूढ़ आसक्त व्यक्ति के लिए आप गृहस्थ धर्म का उपदेश कीजिए। तब युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को देखकर नारद मुनि उपदेश देते हैं, बहुत सुंदर उपदेश है कि गृहस्थ में यदि रहना है, गृहेषु अवस्थितो राजन कुर्वन क्रिया यथोचिता वासुदेव अर्पणम साक्षात उपासित महामुनि। गृहस्थियों के लिए नारद मुनि इस 14वें अध्याय में बहुत उपदेश देते हैं, बहुत। परंतु सबसे पहला उपदेश नारद मुनि ने प्रारंभ कहां से किया, गृहेषु अवस्थितो राजन, हे राजन गृहस्थी में रहकर भगवान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले गृहेषु अवस्थितो, सबसे पहले गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थी में ही स्थित रहे, गृह में ही स्थित रहे। कुछ लोग इतने भावुकता में आ जाते हैं, भक्ति में कुछ महीने होते हैं तो सोचते हैं कि अब मैं वृंदावन चला जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। परंतु नारद मुनि कहते हैं कि ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, सबसे पहली बात उसे गृहस्थी में रहना चाहिए, गृहेषु अवस्थितो, और गृह में रहकर भक्ति करनी चाहिए। यदि गृह में नहीं रहना था तो विवाह क्यों किए, हमने यह गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया है इसलिए गृह में रहकर भक्ति करनी चाहिए, और गृह में रहकर जो भी कार्य करते हैं वासुदेव अर्पणम साक्षात, साक्षात वासुदेव को अर्पण करना चाहिए और उपासित महामुनि। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, प्रभु आप कह रहे हो गृहस्थी में ही रहे, गृहस्थी में ही रहे, तो गृहस्थी में रहकर तो गृहस्थी में आसक्ति हो जाएगी। तब नारद मुनि ने कहा, नहीं गृहस्थी में रहना है परंतु गृहस्थी में आसक्त नहीं होना। जब लोकालय शुरू का रविवार को प्रवचन था इसके ऊपर, मैंने प्रभु जी को पूछा कि प्रभु यहां पर नारद मुनि कह रहे हैं कि गृहेषु अवस्थितो राजन, एक गृहस्थी को चाहिए कि गृहस्थी में ही रहे, उसे छोड़े नहीं, और प्रहलाद महाराज कहते हैं हितवात्म पातम गृहंद गुपम वनम गतो यत हरिमाश्रयत, हे पिताजी सबसे अच्छी बात तो यह है कि आप वन में चले जाओ। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को कह रहे हैं कि आप वन में चले जाओ और नारद मुनि गृहस्थी को कह रहे हैं कि आप घर पर रहो, तो इसे कैसे समझा जाए। प्रहलाद कह रहे थे कि वो हिरण्यकश्यप था, अपनी गृहस्थी में इतना आसक्त था और कोई भी व्यक्ति उसे प्रवचन सुनाने के लिए आता था तो वह सुनता नहीं था, इसलिए प्रहलाद महाराज ने कह दिया चलो भागो यहां से। परंतु गृहस्थी में रहकर गृहस्थी की आसक्ति से यदि मुक्त रहना है तो क्या करना चाहिए, नारद मुनि कहते हैं कि उपासित महामुनि, महामुनि के उपासित, महामुनियों के साथ रहेंगे, शुद्ध भक्तों के वचनों के साथ यदि रहोगे तो कभी भी गृह की आसक्ति में नहीं फंसोगे। गृहस्थी में भी रहते हुए भी गृह की आसक्ति से मुक्त होना है तो उपासित महामुनि महामुनियों के संग में रहना चाहिए। महामुनियों के संग में रहकर क्या करना चाहिए? कहते हैं अवतार कथा शुभा। महामुनियों के संग में रहकर भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी चाहिए। ये कथा सुनकर भगवान का नाम लेकर आसक्ति से मुक्त होना चाहिए। ये संक्षिप्त में नारद मुनि ने उपदेश दिया। फिर उस उपदेश को एक्सपांड कर रहे हैं, सूक्ष्म बात बता रहे हैं क्या करना चाहिए। तो गत श्लोकों में नारद मुनि ने बहुत सुंदर बातें बताई कि गृहस्थ को चाहिए यावत गृहते जठरम तावत स्वस्थम ही देही नाम। एक व्यक्ति को चाहिए कि जब तक अपना पेट भर जाए उतना ही पैसा जुटाए, उतना ही धन रखे और जितना बाकी का धन जो बचता है वह दूसरों को बांट दे। यदि वह अपना पेट भर जाए उससे ज्यादा धन रखता है तो सस्तेन स वह व्यक्ति स्तेन है। स्तेन कहते चोर। जो व्यक्ति अपनी जरूरियात से ज्यादा धन रखता है वह सबसे बड़ा चोर है और ऐसे चोर को दंडम अर्हति निश्चित दंड मिलेगा। कमलोचन प्रभु ने इस पर प्रवचन दिया था। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास धन है हमें तो दंड नहीं मिल रहा है, परंतु प्रकृति उसे एक ना एक दिन दंड देगी और इस जन्म में दंड नहीं मिला तो मरने के बाद यमराज जी दंड देंगे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जब तक अपना पेट भर जाए उतना ही धन। प्रभुपाद जी भी ईशोपनिषद के प्रथम श्लोक में इसी बात को कहते हैं कि अपनी जरूरत से ज्यादा जो धन कमाता है रखता है वह सबसे बड़ा चोर है। तो इस चोरी से बचना चाहिए। और बहुत सुंदर प्रैक्टिकल बात फिर बाद में बताते हैं कि मृगो खर अमर का तू। हमारे घर पे जितने भी छोटे छोटे पशु हैं जीव जंतु हैं उसको कभी भी मारना नहीं चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए। तो प्रश्न होता है हमारे घर पर जो कॉकरोच है छिपकली है चींटी है उसे कितना प्रेम करना चाहिए? तो नारद मुनि कहते हैं अपने पुत्र की तरह। श्लोक में आया है घर पर जो कॉकरोच है चींटी है और जितने भी जीव जंतु हैं उसे अपने पुत्र की तरह प्रेम करना चाहिए। श्रीधर स्वामी इसकी टीका में लिखते हैं पुत्र की तरह प्रेम। श्रीधर स्वामी कहते हैं हाँ घर पर जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वो पुत्र से भी ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि पुत्र कैसा होता है? पुत्र पिता की पहले तो पिता उनकी बहुत सेवा करते हैं, फिर पिता की सारी संपत्ति को हड़प लेता है और पिता को घर से बाहर निकाल देता है। तो उससे तो अच्छा घर पर रहने वाले वो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, बेचारे को एक वो शक्कर का दाना दे दो संतुष्ट हो जाएंगे। पुत्र जितना प्रेम घर पर रहने वाले जीव जंतु से करना चाहिए नारद मुनि कहते हैं। और फिर आगे आज के श्लोक में कहते हैं आश्वा अध अंते अवसायिव्य कामान संवी भजेत यथा। अब नारद मुनि कहते हैं कि यदि हमारे पास कुछ धन बचा है, हमारे पास यदि कुछ भोग सामग्री है तो उस भोग सामग्री को कहते हैं श्व अघ और अंते अवसाई नाम, ये तीन लोगों को दे देनी चाहिए। किस किस को? तो सबसे पहले कहते हैं श्व। श्व का अर्थ होता है कुत्ता। हमारे पास जो भोग सामग्री है वह कुत्तों को बांट देनी चाहिए। आज भी हमारे गांव में यह थियरी है यह विधि है कि घर पर कुछ भोजन बनाते हैं तो गाय और कुत्तों के लिए कुछ एक्स्ट्रा भोजन बनाते हैं, रोटी इत्यादि बनाते हैं और भोजन के पहले या बाद में गाय और कुत्ते को खिलाते हैं और जो भी बचा है गाय और कुत्ते को खिलाते हैं। परंतु शहर में रहने वाला मनुष्य भोजन के पहले तो नहीं खिलाते हैं, परंतु भोजन के बाद जो बचता है वह भी गाय और कुत्ते को खिलाने में इतनी आलस करते हैं कचरे में फेंक देते हैं परंतु गाय और कुत्ते को नहीं खिलाते हैं। कहते हैं श्व जितनी भी भोग सामग्री है कुत्ते को खिलानी चाहिए। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर परपोट लिखा है। देखो कुत्ते को अपनी भोग सामग्री खिलाने की बात कर रहे हैं, कुत्ते को घर के अंदर लाने की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर एक शब्द है यथा संभी भजेत, भजेत यथा। ये यथा शब्द बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो कुछ लोग भागवत का सहारा लेकर कहेंगे भागवत में लिखा है श्व कुत्तों को खिलाना चाहिए, परंतु नारद मुनि बहुत सतर्क रहे उपदेश देने में, कह दिया यथा यथा योग्य। रूपा जी कहते यथा शब्द का अर्थ है कुत्तों को बाहर जाकर भोजन खिलाकर आ जाना चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुत्तों को घर पे वेलकम करें, कुत्तों को बिठाए, कुत्तों को भोजन कराए और उसके साथ सोया भी जाए, क्लियर लिखे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि कुत्तों को साथ सोना चाहिए, उसके साथ खेलना चाहिए, उठना बैठना, सबके साथ यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए। आज तो लोग कुत्ते की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, अपने पुत्र से ज्यादा कुत्ते की सेवा करते हैं। एक बार मैं हमारे बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर खड़े खड़े जप कर रहा था, तो रोज का शेड्यूल 8 बजे वो कुत्ता मुंह हिलाते हिलाते टेरेस पर आ जाता है, 2 मिनट के बाद उसका मालिक आता है, उसको नहलाता है, साबुन से धोता है, फिर एक कंघी लेता है, फिर उसके ऊपर ऐसे आधा घंटे तक घुमाता है और कुत्ता आराम से सोता है। इतना प्रेम करता है वह मालिक इससे। हमारे गुरु महाराज एक बार कह रहे थे तो भारत में तो फिर भी ठीक है, विदेश में जब व्यक्ति कुत्ते को लेकर निकलते हैं तो जेब में थैली रख कर जाते हैं। थैली क्यों रखते हैं? विदेशों में यदि कुत्ता रास्ते में इधर उधर टट्टी पेशाब कर दिया तो बहुत फाइन होता है, बहुत डॉलर देने पड़ते हैं। तो जब वो मालिक समझता है कि कुत्ते को अभी टट्टी पेशाब करना है तो वह समझ जाते हैं, जेब से थैली निकाल कर भर लेते हैं और फिर लेकर जाते हैं। समझ में नहीं आता है मालिक कुत्ता है या वो मनुष्य। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुत्ते की इस प्रकार से सेवा नहीं करनी चाहिए, जो भी भोग सामग्री है कुत्ते के सामने छोड़ देना चाहिए यथा योग्य। कुत्ते को श्व को पश्चात कहते हैं अध, अध अर्थात पतित। हमारे गांव में शहर में कुछ पतित लोग होते हैं, ऐसे पतित लोगों को भोग सामग्री दे देनी चाहिए। अंते अवसाई नाम चांडाल, और जो चांडाल है कुत्ते खाने वाले हैं, ऐसे शूद्र को भी कुछ खाना पीना दे देना चाहिए। प्रभुपाद जी यथा शब्द के ऊपर बहुत सुंदर लिखे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये चांडालों को ये शूद्र को करोड़पति बना दिया जाए, ये सबको यथा योग्य संपत्ति देनी चाहिए। इस संसार में प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस संसार में कई लोग मानव सेवा करते हैं और धन बांटते हैं, धन देते हैं सबको, परंतु वास्तव में ये शास्त्र के विरुद्ध है। सबको यथा योग्य धन देना चाहिए। यदि शूद्र के पास ज्यादा धन आ गया तो प्रभुपाद जी कहते हैं वे शराब पिएंगे, वे धन लेकर अच्छे कार्य नहीं करेंगे। इसलिए जब हम किसी को दान देते हैं या धन देते हैं या किसी को नौकरी पर रखते हैं तो उसे यथा योग्य सैलरी देनी चाहिए, पगार देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा भी पगार देना ये भी पाप है, इसलिए यथा शब्द महत्वपूर्ण है। ये सबको यथा योग्य संविभजेत, धन का विभाजन, भोग सामग्री का विभाजन करना चाहिए। इस श्लोक में एक शब्द है आ शब्द, आप देखेंगे पहला ही शब्द है आ। श्व अघ और साई नाम ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, परंतु आ शब्द जो है इसकी कुछ विशेष महिमा है। आ शब्द का अर्थ विजय ध्वज जी कहते हैं कर्मांगम चेत ग्रहणम प्रयोजनम न ग्राम्य भोग तथात्मे तद्दारा पूर्णस्य दुरासन दुर अध्यात्वेन तत्र प्रयत्ने महान दोष आबद्ये तद अभिप्रायण आ। यहाँ पर आ एक शब्द है, उसका अर्थ है कि हम इस संसार में जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, कर्मांगम हमारे कर्म के जितने भी अंग हैं, ऑफिस में जाते हैं, नौकरी करते हैं, जो भी हैं, उस कर्म का जो फल मिलता है वो फल पहले तो कह दिया भगवान को अर्पण करना चाहिए, और जो धन बचता है उस धन को ये श्व अध अंत्यवसायी नाम कुत्तों को चांडाल को पतितों को ये धन बांट देना चाहिए। वह धन हमारे लिए नहीं बचाना चाहिए, यदि वह धन हमारे लिए बचाते हैं तत्र यत प्रयत्ने महान दोष, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा दोष लगता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जरूरत से ज्यादा धन रखने वाले को बहुत दोष लगता है, इसलिए वह धन ये अलग अलग लोगों में बांट देना चाहिए। और धन को यहां पर कामान कहा गया है, कामान संवी भजेत, कामान को, काम को भजेत, वी भजेत विशेष रूप से विभाजन कर देना चाहिए। काम का अर्थ क्या होता है, कहते हैं कामान अन्न आदिन विभजेत, हमारे पास जो अन्न है उस अन्न को ये स्व कुत्ते इत्यादि को बांटना चाहिए। और दूसरा अर्थ है कामान संविभजेत स्व भोग्यान विभज्यत दान। कभी कभी होता है यदि हम भक्तों के लिए यदि ये बात ली जाए तो कभी कभी कुछ लोग भक्तों को दान देते हैं, तो भक्तों को चाहिए कि उसे भगवान की सेवा में लगाए, परंतु यदि वह भगवान की लगाम भगवान की सेवा में लगाने जैसी वस्तु नहीं है, कुछ बचती है, तो वह वस्तु हमें भोग न भोग कर ये कुत्ते श्वपच इत्यादि को बांट देनी चाहिए, संविभजे, नहीं तो महान दोष लगता है। और यथा यथा योग्य बांटना चाहिए, ये तो ठीक है, परंतु दूसरे चरण में नारद मुनि एक महत्वपूर्ण बात गृहस्थ के लिए कर रहे हैं, कहते अपि एकाम आत्म न दाराम निणाम स्वत्व ग्रह यत, कहते कामान कामान भोग सामग्री बहुत प्रकार की होती है, भोग सामग्री में एक वस्तु अपनी पत्नी भी होती है, इसलिए दूसरी लाइन जो है नारद मुनि पत्नी के लिए कह रहे हैं उत्तरार्ध में, कहते हैं अपि एकाम आत्म न दाराम, एकमात्र यदि किसी व्यक्ति की एक भी पत्नी है, एकमात्र अपि एकाम अपि, यदि किसी की एक पत्नी भी है, हजारों पत्नी है तो ठीक है, परंतु एक भी पत्नी यदि की है किसी की है तो निणाम सत्व ग्रह यत, तो उस पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को दूसरों की सेवा में लगाए। ये काम भोग की वस्तु को तो दूसरों की सेवा में लगानी चाहिए, परंतु अपनी पत्नी को भी दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए। इस वाक्य के ऊपर हमारे आचार्य ने बहुत कुछ लिखा है, वीर राघव जी कहते हैं संगम आत्म जाया सुतादिशु विमुच्य, नारद मुनि ने पिछले श्लोकों में कहा कि संगम आत्म जाया आत्मजादिशु, आत्म माने अपने शरीर से, आत्म जाया अपनी पत्नी से, और आत्मज अपने पुत्र से, जो भी संगम जो भी आसक्ति है उससे विमुच्य मुक्त होना है। ये नारद मुनि ने आगे के श्लोक में कहा अपने शरीर पत्नी और बच्चों की आसक्ति से मुक्त होना है। संग त्याग उत्पादयति अपि इति, परंतु यदि व्यक्ति अपनी पत्नी की आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता है तो क्या करना चाहिए, गत श्लोक में कह दिया कि पत्नी की आसक्ति से मुक्त होना, परंतु यदि वह व्यक्ति यह न कर सके, कहते आत्मन स्वरूप धारान भार्यम एकामपि, यदि पत्नी की आसक्ति से मुक्त न हो सके तो उस पत्नी को अतिथियों की सेवा में लगाना चाहिए। रूपा जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि यदि एक व्यक्ति एक पति अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाता है, रूपा जी ने शब्द लिखा है जनता की सेवा में, परंतु जनता की सेवा न करे कोई बात नहीं, अतिथियों की सेवा में यदि अपनी पत्नी को व्यक्ति लगाता है तो एक साइंस है, एक विज्ञान है, अतिथियों की सेवा में अपनी पत्नी को लगाने से व्यक्ति पत्नी की आसक्ति से मुक्त हो जाता है, तो अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाना चाहिए। आत्मन सेवामन अपेक्षाम अपि आतिथ्य आदिशु शुश्रुणे नियोजी इति अर्थ, अतिथियों की सेवा में अपनी पति पत्नी को लगाना यही है पति का सर्वोच्च उद्देश्य। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को भगवान की सेवा में लगाए और अतिथि की सेवा में, क्योंकि अतिथि भगवान का स्वरूप माना गया है। और वंशीधर जी तो यहां तक कह दिए शिपाशेद स्वामी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यदि क्वचित अतिथि रूपा, मानो यदि कोई अतिथि किसी के घर पर आया है और वह अतिथि रति भी इच्छा अर्थम, यदि वह अतिथि उस पत्नी के साथ रति संभोग करने की इच्छा करे तो। हमारे आचार्य की बुद्धि देखिए कहां कहां तक चली जाती है। अतिथि की सेवा, एक पति को चाहिए अपनी पत्नी को घर पर जो अतिथि आए हैं उनकी सेवा में लगाए। देखिए ये उस बात का उपदेश देने के लिए कहा जा रहा है, ऐसा नहीं कि कल से यही करना है। ये उपदेश जो है उस बात को सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है कि पत्नी को चाहिए कि अतिथि की सेवा में लगाए ही। तो वंशीधर जी एक बहुत सुंदर पॉइंट उठाते हैं, यदि वो अतिथि ऐसा कहें कि आपकी पत्नी के साथ मुझे संग करना है तो क्लियर लिखते हैं कि रति भी इच्छा तदर्थम अभी, यदि रति करने की इच्छा उस अतिथि की हो तो। वंशीधर जी लिखते हैं कि फिर भी एक पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को उसकी सेवा में लगा। ये है अतिथि सेवा करने का धर्म। हम लोग को इस धर्म को जानना चाहिए। तब मन में बहुत भ्रांति, कल में उनको कमल को साथ में दें, बोला ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वंशीधर जी ने पता था कि लोगों को प्रश्न उठेगा, उन्होंने दृष्टांत दिया अपनी टीका में। कहते हैं यथा जैसे सुदर्शनेन राज्ञा कुरुक्षेत्र वासिना, कुरुक्षेत्र में एक राजा रहते थे, उनकी पत्नी थी और उनके घर पर कुछ ब्राह्मण आए। कहते हैं गृहस्थेन अपि अतिथि रूपेण ब्राह्मणेन रममाणा अपि, उस स्त्रियों ने ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने के लिए उनके साथ रमण किया। लेकिन अभी फिर भी स्वस्त्री उस सुदर्शन राजा ने अपनी पत्नी को न त्यक्त्वा, अपनी पत्नी को नहीं त्यागा, किंतु मानितेव तेन कर्मणा तेन अजीतो अपि कालो जीत इति प्रसिद्धम इति श्री महाभारत है। महाभारत में यह वर्णन है कि इस प्रकार का कृत्य करने पर भी वह पति वह सुदर्शन अपनी पत्नी को ब्राह्मण अतिथियों की सेवा में लगाया, इसलिए कभी भी न जीतने वाले काल के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया उस व्यक्ति ने, उस पति ने। इस पर बहुत प्रश्न उत्तर मेरे और कमलोचन प्रभु के हुए, और हो सकता है आपके भी प्रवचन के बाद बहुत प्रश्न हो, इसके उत्तर मात्र कमलोचन प्रभु ही दे सकते हैं। हम तो केवल यहाँ पर आपको छोटा सा पॉइंट बताए, परंतु इससे ये उपदेश लेना है कि एक पति का धर्म है अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाए, यहां पर यह कहा जाता है। परंतु मन में एक प्रश्न उठा कि ठीक है पति धार्मिक है, शास्त्र जानता है और अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा करने का आदेश देता है, परंतु पत्नी यदि अतिथि की सेवा न करे तो। पति अपने धर्म में स्थित है और पत्नी को कहता है चलो अतिथि की सेवा करो, और अतिथि उसमें भी ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, भक्त हो, और तब वो पत्नी यदि अतिथि की सेवा करने का इनकार कर दे तो पति को क्या करना चाहिए। तो कहते हैं उस समय में उस पति को चाहिए कि पत्नी को त्याग दे, क्योंकि ऐसी पत्नी को यदि पति रखता है तो वह अधर्म का साथ दे रहा है। पति को चाहिए अधर्म का साथ, और इसके ज्वलंत प्रमाण रामानुजाचार्य उपदेशामृत के एक श्लोक की टीका में एक संत बहुत सुंदर इस बात को कहते हैं, कमलोचन प्रभु को सुना रहे हैं। रामानुजाचार्य एक गृहस्थ थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन के बाद उनके घर पर उनके गुरुजी आए, उनके गुरुजी भी गृहस्थ थे। गुरुजी अपनी पत्नी के साथ आए रामानुजाचार्य के घर पर, और रामानुजाचार्य ने कुछ सेवा करने के लिए अपनी पत्नी को कहा। रामानुजाचार्य की पत्नी ने कहा कि ये कैसे गुरु है, ये तो निम्न कोटि के ब्राह्मण है, इनकी सेवा हम करेंगे। अपने गुरु को और अपने गुरु की पत्नी को कह दिया कि ये निम्न कोटि के हैं। रामानुजाचार्य ने ये बात सुनते ही तुरंत अपनी पत्नी को त्याग दिया। तो एक पति का, एक गृहस्थी का ये धर्म है कि अपने धन को भगवान की सेवा में लगाए और भक्तों की सेवा में लगाए और अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाए। और इसके और एक प्रमाण साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण इतने विवाह करके कितने बड़े गृहस्थ थे, लेकिन फिर भी उनकी गृहस्थी देखिए कितने परफेक्ट गृहस्थ थे। बहुत सुंदर द्वारका की यह कथा है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में रहते थे, 16108 रानियां थी, पत्नी थी। और एक दिन भगवान को पता चला द्वारका में दुर्वासा ऋषि आए। भगवान श्री कृष्ण दुर्वासा ऋषि को लेने के लिए गांव के चौराहे में गए और जाकर कहा कि दुर्वासा जी कृपया करके आप हमारे घर पर आइए। कृष्ण के साथ रुक्मणी भी थी उनकी पत्नी। कहा कि आप, हम आपके लिए सोने का रथ लेकर आए हैं, आप रथ पर सवार हो जाइए और हमारे घर पर आइए, आपकी सेवा का लाभ दीजिए। दुर्वासा ने कहा देखो मैं किसी घोड़े के जूते हुए रथ में नहीं चढ़ता हूं। जिस रथ में तुम और तुम्हारी पत्नी जुटेंगे और तुम और तुम्हारी पत्नी उस रथ के ऊपर मुझे बिठाकर, उस बैलगाड़ी में बैल नहीं, तुम कृष्ण और रुक्मणी को रहना है और तुम्हारे कंधे पर वो बैलगाड़ी और मुझे खींचकर जाओगे तब मैं आऊंगा। भगवान श्री कृष्ण अतिथि का सत्कार। अब देखिए उस समय कृष्ण तो वो कार्य करने के लिए तैयार, परंतु हो सकता था पत्नी ना कर दे, मैं क्यों खींचू बैलगाड़ी। परंतु रुक्मणी अपने धर्म में स्थित रही, कहा ठीक है प्रभु, यदि अतिथि का सत्कार करने के लिए बैलगाड़ी उठाना पड़े, ये तो भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य है। कभी पृथ्वी पर पग नहीं रखा था, फर्श के ऊपर या नरम नरम गालीचे के ऊपर अपना कदम रखने वाली रुक्मणी, एक बैलगाड़ी लाई गई उनके रुक्मणी के कंधे पर और कृष्ण के कंधे पर वो रखी गई। दुर्वासा जी ऊपर बैठे और कृष्ण और रुक्मणी से चला गया। कभी पानी का घड़ा भी नहीं उठाया था और रुक्मणी उस बैलगाड़ी को खींचने लगी। बहुत सुंदर कथा है। खींचते खींचते पसीना आया, प्यास लगी, भगवान ने उस समय अपने अंगूठे से पृथ्वी पर मारा, वहां से पानी निकला, रुक्मणी के मुख में पानी गया और रुक्मणी ने पानी पिया। रुद्राचार्य ऊपर बैठे बैठे क्रोधित हो रहे हैं, अरे मूर्ख लोग, अपराधी पापी, मुझे पूछे बिना पानी पी रहे हो, मेरे बैल बने हो और मुझे पीछे पूछे बिना पानी पी रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों का विरह हो जाए। तो वहां पर दुर्वासा, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर दुर्वासा के श्राप को शिरोधार्य कर दिया। आज भी रुक्मणी और कृष्ण का मंदिर द्वारका में अलग अलग है, साथ में नहीं, और दुर्वासा की सेवा की। एक गृहस्थी का धर्म है अपने अतिथि की, घर पर आए अतिथि की सेवा करना। तो यहाँ पर इसी बात को कहा गया है, प्रथम चरण में यह कहा गया है कि गृहस्थी को चाहिए कामान, अपने जो काम भोग की सामग्री है वे कुत्तों में या चांडालों में या निम्न शूद्रों में बांट देनी चाहिए, और पत्नी को, अपनी पत्नी को अतिथि की सेवा में लगाना चाहिए। अतिथि की सेवा में लगाना, यही पति और पत्नी का मुख्य धर्म है। इस प्रकार से नारद मुनि यहाँ पर जो उपदेश दे रहे हैं, आगे के श्लोक में बहुत सुंदर उपदेश आएगा। मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ और मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कमलोचन प्रभु को, कि इस पॉइंट के ऊपर जरा आप सबको बताइए कि यहाँ पर महाभारत का जो प्रसंग है, उस प्रसंग के ऊपर अतिथि की सेवा किस प्रकार से की जाए। हरे कृष्ण।
जाके बताओ कि मैं आ रहा हूँ, ये सब लोग आ रहे हैं। और ये सब जाके उधर हमारी बात होता है कि हमारे गुरु जो आए हुए हैं मैं कुछ ही समय में आपके घर में आने वाला इतने भाव विभोर हो गए कि गुरु की स्वागत के लिए इतना सुंदर व्यवस्था कर रहे थे हमारे चल के बापू जोशी साहब ने कहा कि आपके स्वागत के लिए बड़ा तैयारी चल रहा है हमारे सर ने पूछा कि तुम्हारा स्वागत हुआ कि तुम गए थे इतने भाव भाव में आ गए जैसे मैंने खबर दिया कि आप आने वाले हो मुझे तो भूल गए थे मुझे पानी तक नहीं पूछा रामा चंद्र ने कहा कि जिस घर में मेरी शिष्य का आदित्य को स्वीकार नहीं किया गया है तो मेरी जाओ भले ही वो कितना भी अमीर हो अपनी जो अमीर है वो दिखाए अपनी संपत्ति है जो करना है करे मैं ये जो मेरे शिष्य है उनके पास जाऊँ तो ये रामाचार्य की स्वयं की मेरे से पता लगता है कि जिस घर में उनकी शिष्य का आदर ना हो उनके घर में गुरु नहीं है तो सब लोग अतिथि बन के सब लोग हैं अतिथि करते हैं कि जो अतिथि के कोई इंफॉर्मेशन के बिना जाता है ऐसा नहीं कि मैं कल आ रही है मैं आ रहा हूँ अपॉइंटमेंट भी रामाचार्य उनके सारे शब्द लेके गए वो गरीब शिष्य उनका ऐसी अवस्था थी रोज भिक्षा मांगने के लिए जाते थे उनकी पत्नी की ऐसी स्थिति घर की ऐसी स्थिति थी उनके पास कोई नहीं पड़ा तो रामानुजन दरवाजा खटखटाए तो अंदर से आवाज आई कौन तो मैंने कहा कि मैं तुम्हारा गुरु रामानुजाचार्य हूँ उनके साथ शिष्य पर तो उनकी उनकी घर में उनकी नहीं थी पत्नी अकेली थी तो मैंने कहा कि मैं इस अवस्था में आप दरवाजा खोल नहीं सकती हूँ फिर पूरा बताया रामानुजाचार्य कह के अपना स्वयं का अंग वस्त्र निकाल कर रख दिया उसको पहन के दरवाजा खोल के सारे शिष्यों को बिठाया राजा को बिठाए बिठा कर कहा कि मैं आपके लिए बहुत सुंदर भगवान बनाऊंगी अंदर के किचन के अंदर जाके देखती है तो उनको मालूम है अंदर देखती थी तो एक दाना भी नहीं है कुछ भी नहीं तब उनको याद आया कि उस उनकी उनके ऊपर एक उधर का एक लोकल व्यापारी का नजर था तो बार बार उसको कहता था कि तुम मेरे पास आ जाओ ये गरीब गांव के साथ क्यों है इतने सुंदर हो मैं तुमको सारे सुविधा प्रदान करूँगा तो फिर उनको कभी वो ब्राह्मण की स्थिति है तो मौत कर वो नकार देती तो तब उनको ये बात आता है तो तुरंत पीछे की दरवाजे से उसके पास गई जाकर उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ आप मेरे साथ जो करना है कीजिएगा मेरे घर में मेरे गुरु आए मेरे साथ में और शिष्य आए बस एक ही है उनके लिए मैं उनको भगवान बनाना है वो विजय बनाना है मुझे बहुत खुश हो गया कि ऐसा है क्या जो चाहे वो लेके जाओ तो बहुत सारा सामान वगैरह लेके आए किसी के वजह से हम बहुत सुंदर भगवान बनाए बना के उन्हें सब सबको खिलाने की तैयारी था उसी समय उनकी पति घर पहुंचे उस दिन जो भिक्षा मांगने गए वो भिक्षा भी कुछ नहीं मिला था देखते इतना बड़ा फेस्टिवल जैसा हो रहा है सबको खाना वगैरह क्या है सबको परोसे सब कुछ हुआ तब रामाचार्य के सारे से संतुष्ट करके बैठे हुए हैं और अंदर ही कमरे में पति जाके पूछा उनके पास कुछ भी नहीं थे सब कहाँ से लाए उनकी पत्नी ने कहा कि आपको मालूम है जो व्यापारी उसका नजर मेरे पकड़ा हमारे घर में कुछ आए मैं उनके पास जाके वचन देके आई हूँ मैं अपने गुरु का सत्कार और दीदी सत्कार करने के लिए चाहूंगी चाहिए उसके बाद आप मेरे साथ जो करना कर सकते हो पति इतना खुश हो गया अपनी पत्नी के ऊपर मैंने कहा कि ऐसी पत्नी को अगर प्राप्त किया है जो अपने गुरु की अतिथि की सेवा करने के लिए जो अपना जो ये है देवता धर्म है उसको भी त्याग करने के लिए तैयार है पता नहीं कौन सा जन्म का पुण्य कार्य है जिससे किस प्रकार की पत्नी प्राप्त हुई तो ये जो संवाद है रामानुजाचार्य सुन रहे इंदर आकर तो मालूम है पिता अच्छी है रामानुजाचार्य ने कहा तुम जाओ व्यापारी के पास अभी ये जो है उचिष्ट है उसको लेके जाओ अभी वो पत्नी को व्यापारी के पास ले व्यापारी बहुत खुश हो गया कि आओ इतने साल से मैं आपका इंतजार कर रहा था अभी मेरे इच्छा पूरा हुआ है एक अंतर स्वागत किया उसकी पत्नी ने कहा अभी तो मेरे साथ आपके साथ नहीं रहने वाली हूँ, आप दो कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक इच्छा है कि हमारे घर में गुरु आए, गुरु का थोड़ा उचित शिक्षण दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, थोड़ा सा ब्रह्मा जी सर उचित कैसे कैसे ग्रहण किया, उनका पूरा मनोभाव चेंज हो गया। तुरंत वो जो स्त्री है काफी, मैं इतने पवित्र हुआ, अपने गुरु के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार। तो ऐसी स्त्री के ऊपर मेरा गलत नजर था, माफ कर लीजिए। और अपनी पत्नी को पति को बुलाया, कहा कि अभी आपको गरीबी में नहीं रहना, आप मैं पूरा संपत्ति जो चाहिए वो सब ले लो, ज्यादा संपत्ति देने के लिए तैयार। तो उनकी पति ने कहा कि हमारे घर में हमारे गुरु का चरण इसलिए पड़ा क्योंकि हम गरीब, क्योंकि अभी घर में गया था उनके भी शिष्य है, वो भी उनके पास भाव था। यही जो गरीबी है इसी के कारण हमारे गुरु हमारे घर में, तो ये जो सौभाग्य है उसको क्यों त्याग करो। उन्होंने रामाचार्य के दोनों शिष्यों को प्रसन्न हो गए। ये जो बात कहा गया है इधर, ये प्रत्यक्ष उदाहरण है रामाचार्य के प्रसन्न, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि एक होता है आर्थिक कर्म दूसरा परमात्मिक कर्म। वैष्णव का सेवा करना और ब्राह्मणों का सेवा करना है परमात्मिक कर्म। आर्थिक कर्म क्या है कि पतिव्रता धर्म आर्थिक कर्म, जहाँ दोनों के बीच में क्लैश होता है, जिन दोनों के बीच में समंजस होता है, समन्वय नहीं होता है, उस समय परमात्मिक कर्म को स्वीकार करना चाहिए, आर्थिक कर्म को त्याग करना चाहिए। जैसे रामायण में भी प्रसंग है कि सीता रामचंद्र के पास साथ में वनवास गई, तो लक्ष्मण की पत्नी क्यों नहीं गई, उर्मिला क्यों नहीं गई, पतिव्रता का धर्म तो पापों को भी करना था। लेकिन सारे आचार्य शिवेश्वराचार्य कहते हैं सीता की महत्ता को पूरा रावण का वर्णन नहीं वर्णन है, लेकिन उर्मिला की महत्ता को वर्णन करने के लिए कोई शब्द नहीं। क्यों, क्योंकि सीता का आर्थिक धर्म और परमात्मिक धर्म दोनों साथ हैं, उनकी पति है, पति का सेवा करना है और भगवान की सेवा करना है, ये दोनों में कोई क्लैश नहीं था, क्योंकि पति ही भगवान तो है, भगवान की इच्छा है, लेकिन सेवी गुरु है। अभी उर्मिला पतिव्रता धर्म करना है तो लक्ष्मण के साथ जाना है, अगर लक्ष्मण के साथ जाती तो लक्ष्मण का जो पूरा ध्यान रामचंद्र को नहीं रहता, उनको संरक्षण करने का बात उसके ऊपर चले जाता है। तो भगवान की सेवा करना है तो उनकी पति के साथ नहीं जाना है, तब इन दोनों के बीच में क्लैश था। तो इसलिए उर्मिला ने क्या किया, जाने तो मेरे पति बता दें, पति जंगल में जा रहा है और पत्नी को महल में रहना, ये तो पति पत्नी का बिल्कुल विपरीत पतिव्रता धर्म का। मैंने क्या किया, पतिव्रता धर्म को क्या इसके लिए भगवान की सेवा मूल धर्म उसको। तो ये अनेक प्रसंग है, ये भी उसी के संबंध में आता है।
मैंने तो एक केवल सिद्धांत दिया, प्रभु जी ने उसका वर्णन किया, सारी ही है कि परमार्थिक धर्म के लिए आर्थिक धर्म को त्याग जा सकता है। बहुत सुंदर ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की श्री गोपाल की।